الحمد
Recording in
لله
progress.
وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. तो इस क्लास की इब्तदा क्या कर दिया, बहरहाल छोड़ दो, वैसे बोल रहे हैं। इस क्लास की इब्तदा हम यूजुअली जिस तरह सवाल से करते हैं, तो उसके बाद फिर हम एक चीज़ आपको पढ़ के सुनाएंगे, उसके बाद बाकी क्लास शुरू करेंगे। तो सवाल जो होता है कि हम पिछली क्लास के अंदर क्या पढ़ रहे थे, कौन सा टॉपिक था, राइट साइड से शुरू करना हक बनता है। जी
लश्कर
बताइए।
ईरान से लड़ रहा था तो ईरान के बादशाह ने खत भेजा था कि मुझे तुम्हारे लश्कर पर लड़ने के लिए अपनी सही फौजी भेजी, बस जो खेत में काम करते उनको भेजी।
अच्छा, बस ऐसे ही लोग हमने भेज दिए। तो जो सिपहसालार थे उन्होंने बड़ा मुंह तोड़ किस्म का जवाब दिया था उसको। अब आप बता दिए। हाँ माशाल्लाह, आखिरी बिल्कुल बात तो यही थी कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला उनको खलीफा बनाने थे। आप यही कह रहे थे, आप यही कह रहे थे, ठीक है। तो उसमें जो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मशवरे किए थे। जी आपको क्या लगता है? हाँ, तो मशवरे हो गए थे सारे। फिर उसके बाद उस्मान रजी अल्लाह तआला उनको दोबारा बुलवाया था और उनसे कहा था कि तुम लिखो मेरा वसीयतनामा, खिलाफतनामा। तो उसमें उस दौरान जो है वो बकर सिद्दीक रतान के ऊपर बेहोशी तारी हो गई थी। तो उस्मान रतान को इतनी फिक्र हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि खिलाफत का नामा लिखवाए बगैर अगर इंतकाल फरमा गए तो फिर ये बहुत बड़े फितने का सबब बन जाएगा और इंतशार का सबब बन जाएगा। तो उन्होंने खुद ही लिख दिया। लेकिन अबू बकर सिद्दीक रतान जो है वो फिर होश में आए और उन्होंने पूछा कि क्या तुमने लिखा उस्मान। तो उन्होंने बताया तो बहुत खुश हुए। और उसके बाद फिर उन्होंने अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने खुद भी मुसलमानों से खिताब किया और बताया कि जिस शख्स को मैंने खलीफा मुकर्रर किया है वो मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है बल्कि वो उमर है, क्या तुम उन्हें कबूल करते हो? तो सबने यक आवाज, यानी एक ही आवाज में सबने जवाब दिया कि बेशक हमने सुना और अताअत करी, समिअना व अताअना। ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद फिर जो हमने आपको एक पढ़ के सुनानी थी बात, वो हम आप में से कुछ साथियों को पहले भी सुना चुके हैं। थर्सडे की हमारी क्लास थी, उसके आखिर में बिल्कुल। वो एक कॉल है हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु का, ठीक है, जो कि बहुत ही यानी सीनियर साहबा में से थे, बिल्कुल अव्वलून, साबिकून अव्वलून, सबसे पहले ईमान लाने वाले साहबा में, और नबी अलैहिस्सलाम के आशिक सादिक, इंतहाई कमजोर जिस्मानी तौर पर लेकिन ईमानी तौर पर इंतहाई मजबूत। और ये वही हैं कि जिनकी फिका को जो है वो हम हनफी फिका के अंदर ज्यादातर फॉलो किया करते हैं, उन्हीं के हदीसों की बुनियाद पर ज्यादा हनफी फिक की बुनियाद पड़ती है। तो उन्होंने एक इरशाद फरमाया जो कि किताब के अंदर शरह सफारीनी लिद्दुर्रतिल मनीफा, इसमें उनका ये कौल नकल है। उन्होंने फरमाया था कि जो शख्स फॉलो करना चाहता है ना किसी को, जो शख्स इक्तदा करना चाहता है यानी फॉलो करना चाहता है किसी को, उसको चाहिए कि अस्हाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा करें, उनको फॉलो करें, सहाबा कराम को। क्योंकि फकीह है ना, तो फकीह तो फिर दलील से बात करता है ना, उसके पास कोई प्रूफ होता है, उसके पास कोई रीजनिंग होती है, वो खाली ऐसी नहीं बात कर देता। तो इन्होंने भी फिर वजह बताई, मैं क्यों ऐसी बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि क्योंकि ये हजरात सारी उम्मत से ज्यादा अपने दिलों के एतबार से पाक थे, इनके दिल बिल्कुल पाक साफ थे, इल्म के एतबार से गहरे थे। गहरे का मतलब क्या होता है? इल्म के एतबार से गहरे थे यानी इनके अंदर डेप्थ ऑफ नॉलेज थी। ठीक है, इसको कोई कोई आप में से समझा सकता है कि ये डेप्थ ऑफ नॉलेज का मतलब क्या होता है? डेप्थ ऑफ नॉलेज का मतलब क्या होता है? गहराई। ऑनलाइन आज बड़े बच्चे ज्यादा तो ऑनलाइन मॉड्यूल है, यहाँ पे एक दो हैं, कोई बता सकता है डेप्थ ऑफ नॉलेज का मतलब? गहरे इल्म के एतबार से क्या मतलब होता है? जी जी बताइए।
ये जो जो है
नुक्ता नजर नबी अलैहिस्सलाम की नुक्ता नजर के मुताबिक होता था। ठीक है, अच्छी बात है, बिल्कुल ऐसे ही होता था, लेकिन गहराई इल्म की उसको ऐसे एक्सप्लेन नहीं करेंगे। डिटेल नहीं, एक्चुअली डिटेल नहीं। जी दे,
चीजों को समझना और सुनना
चीजों को बहुत ही अच्छे से समझना, ठीक है, यानी जो भी आपको इल्म हासिल है ना, तो उसको उसके बारे में बिल्कुल कंफ्यूजन ना होना, बिल्कुल ऐसा ना होना कि बस सुपरफिशियल हाई लेवल पता है, बल्कि उसकी पूरी पूरी हिकमत का भी समझ में आना आपको। ठीक है, इसको समझने के लिए ज्यादा आसान तरीका ये भी है कि अल अशियाउ तारिफु बि अज़दादिहा, चीजें जो है ना वो अक्सर समझ में आती हैं अपने ऑपोजिट से। या आप लोग कई दफा सुन चुके होंगे कि अपने ऑपोजिट से चीज ज्यादा समझ में आती है। ठीक है, जो चीज खुद समझ में नहीं आ रही होती है ना, तो उसके लिए उसके ऑपोजिट को देखो। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट क्या है? इल्म की गहराई का ऑपोजिट क्या होता है? उसको कहते हैं इल्म की लंबाई चौड़ाई, इल्म की वो साथ। ठीक है, जज़ाकअल्लाह। तो एक चीज होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ओशन है, ठीक है, पानी का एक पूल है, पॉन्ड है, ओशन है, सी है। ठीक है, तो उस ओशन की दो चीज होती है ना, एक होती है ओशन कितना जो है वो लंबा है, कितना जो है वो चौड़ा है, ठीक है ना, और दूसरी चीज होती है ओशन की कितनी डेप्थ है। तो डेप्थ एक अलग चीज होती है और लंबाई चौड़ाई एक अलग चीज होती है। ठीक है, तो उसी तरह इल्म के अंदर भी होता है। इल्म के अंदर लंबाई चौड़ाई का मतलब ये होता है कि आपको बहुत ज्यादा चीजें पता है, बहुत सारे फैक्ट्स पता है कि भाई ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, और ये उस वक्त हुआ था, जैसे कि हमने साइंस क्लास के अंदर एक दफा पढ़ा था ना, व्हेन, व्हाट, हाउ, ठीक है, वेयर, ये सारी चीजें आपको बहुत पता है। लेकिन वाई, राइट, वाई जो है ना, ये एक अलग चीज है। वाई जो है वो डेप्थ को कहते हैं कि वाई इज दैट सो, ऐसा क्यों है ये। ठीक है, इसको जो है ना जानना, इसको कहते हैं इनका डेप्थ होना। तो सहाबे कराम का मामला ये था कि इनके पास डेप्थ ऑफ नॉलेज थी, ठीक है, गहराई में इनको हिकमतें पता थी, और ये अल्लाह ताला की, यानी इसकी वजह क्या होती है, क्योंकि इनके दिल में नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत थी, अल्लाह ताला की मोहब्बत थी, और अपने आप को उन्होंने अल्लाह ताला के सामने, नबी अलैहिस्सलाम के सामने कुर्बान कर दिया था। इन्होंने लिखा कि ऑनलाइन किसी चीज को बहुत ही डिटेल में जानना और हर पॉइंट को जानना नहीं, इसको जो है वो तूल अर्ज कहते हैं, इसको गहराई नहीं कहते। गहराई का मतलब दूसरा होता है। अच्छा, तो दुर्लभ ने मसूद ने फरमाया कि देखो सहाबे कराम की तुम इत्तिदा करो, क्योंकि इनके कुलूब पाक थे, इनके कुलूब के अंदर अदावतें नफरतें किसी से नहीं होती थी सिवाय किस चीज के? सिवाय कुफर के। कुफर से इनको नफरत थी, शिर्क से इनको नफरत थी, लेकिन ईमान वालों से और अच्छी चीजों से इनको बिल्कुल कोई अदावत और नफरत नहीं होती थी, बिल्कुल साफ सुथरे होते थे लोग, इल्म के एतबार से गहरे होते थे, तकल्लुफ और बनावट से दूर होते थे। तकल्लुफ और बनावट किस चीज को कहते हैं? ठीक है, कि तकल्लुफ कहते हैं कि खामखा के जो है ना वो नखरे करना, ठीक है, कि भाई ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे होना, तब खामखा जिसकी कोई जरूरत नहीं है, बस एक खामखा की तकल्लुफ करना किसी चीजों के अंदर। जैसे ना वो कहते हैं ना कि आपको कोई खाने के लिए बुला रहा है, ठीक है, अब आपको लगी हुई है भूख, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं, क्या ऐसी क्या जरूरत थी इसकी, आपने खामखा ही जो है तकल्लुफ कर लिया, मुझे तो कोई जरूरत ही नहीं दिखाने की। तो हजरत ने क्या फरमाया, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो कि हजरत ने नकल किया, भूख को और झूठ को जमा ना करो, तुम्हें भूख लगी है खाओ ना के मन, राइट, खाम खा का तकल्लुफ ना करो, ठीक है। तो इस तरह का तकल्लुफ सहाबा कराम नहीं करते थे, ठीक है। एक सहाबी ने किया ताकि उम्मत को अल्लाह ताला सिखा सकें, तो एक सहाबी ने गलती कर ली, नबी सल्लल्लाहु की इस्लाह फरमा दी कि भाई भूख को झूठ को जमा ना करो, हमें भी पता चल गया कि ऐसे नहीं करना चाहिए। तो सहाबा से तो गलती भी हमारी इस्लाह के लिए होती थी। तो और दूसरा, ये जो बनावट होती है ना, ये बनावट होती है खाम खा का ना, वट यू आर नॉट, यू आर ट्राइंग टू शो वट यू आर नॉट, ठीक है ना। जाहिरी तौर पर जो है वो अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं और अंदर से जो है ना वो कोई अच्छा बनने की कोशिश नहीं कर रहे। हाँ, ये और बात है कि अंदर से भी अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं और जाहिर से भी अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर तो ठीक है, लेकिन अंदर से कोई कोशिश नहीं कर रहा है, ऊपर ऊपर से बड़ी कोशिश कर रहे हैं अच्छे अच्छे बन जाए, लोगों को अच्छा समझना शुरू हो जाए और ये शुरू हो जाए, ठीक। तो वो सहाबा कराम इस तरह की कोई काम नहीं करते थे, तकल्लुफ और बनावट से दूर होते थे, सिंपल ह्यूमन बींग्स जिसको कहते हैं, सिंपल सादे लोग थे। आदत के एतबार से, यानी इनकी जो हैबिट्स थी, इनके तौर तरीके थे, ये बिल्कुल बैलेंस्ड होते थे, एक्सट्रीम एक्सट्रीमिज्म इनके नहीं होता था, ठीक है। ना किसी चीज में बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ना किसी चीज में बहुत कम कर रहे हैं, सिवाय अल्लाह की मोहब्बत के। अल्लाह की मोहब्बत के अंदर एक्सट्रीमिज्म ये तो जरूरी है, ठीक है। वल्लज़ीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, सहाबा कराम के बारे में अल्लाह तआला फरमाते हैं कि ये एक्सट्रीम है मेरी मोहब्बत में, लेकिन मोहब्बत के अलावा किसी चीज के अंदर एक्सट्रीमिटी जो होती है वो पसंद नहीं है। तो सहाबा कराम जो है ना, वो हर चीज के अंदर मोतदिल होते थे, बैलेंस्ड होते थे, और हालात के एतबार से ये सबसे बेहतर थे, यानी सबसे अच्छे इनके दीनी हालात थे, खशियत के हालात इनके, अल्लाह की मोहब्बत के हालात, एक दूसरे की खैरख्वाही के हालात बहुत बेहतर थे इनके ना। ये वो लोग हैं, आगे अब्दुल्लाह इब्ने मसूद मजीद वजह बयान करते हैं कि और भी जरा अपनी अकल को हम इस्तेमाल करें तो बात बहुत सिंपल है कि भाई सहाबे ही तो वो लोग हैं ना जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने नबी की सोहबत के लिए पसंद किया, राइट। तो जैसे मिसाल के तौर पर अम्मी अब्बू जब अपने बेटे की शादी करने के लिए जाते हैं तो वो क्या करते हैं, ऐसी लड़की पसंद करते हैं जो कि सबसे अच्छी हो हमारे उनके बेटे के लिए, या बेटी की शादी करने के लिए जाते हैं तो ऐसा लड़का पसंद करते हैं जो कि उनकी बेटी के लिए सबसे अच्छा हो, ठीक है। क्योंकि उनको किससे मोहब्बत है, अपनी बेटी से मोहब्बत है, अपने बेटे से मोहब्बत है, ठीक है ना। तो जितना मोहब्बत अम्मी अब्बू को अपने बेटे या बेटी से होती है, अल्लाह ताला को अपने नबी अलैहिस्सलाम से उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत है, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम अपने महबूब के लिए जो सहाबा पसंद फरमाए वो सबसे अच्छे लोग थे ना, ठीक है। और क्यों पसंद फरमाया, और यानी एक तो पसंद फरमाया नबी अलैहिस्सलाम की सोहबत के लिए और दीन की इकामत के लिए, इन्हीं को पसंद किया ना, कि इन्होंने ही आगे जाकर के दीन को स्टैब्लिश करना था और फैलाना था। नबी अलैहिस्सलाम ने तो सिखा दिया दीन, नबी अलैहिस्सलाम ने पहुंचा दिया दीन, लेकिन अब दीन को दुनिया के अंदर स्टैब्लिश करना ये सहाबा किराम के जरिए से अल्लाह ताला ने करवाया। तो तुम उनकी कदर पहचानो और उनके आसार का इत्तेबा करो, क्योंकि यही लोग राहे मुस्तकीम पर हैं, ठीक है। तुम इनकी इज्जत करो, इनकी कदर करो, इनको इग्नोर ना करो, इनकी नाकदरी ना करो। तो अब हम इनकी कदर कैसे करेंगे, हम इनके आसार की इत्तेबा कैसे करेंगे, ठीक है ना। बहुत ही आसान सा सवाल है, कोई अगर आपने जवाब दे सके, हम इनके आसार की यानी इनके तरीके की इत्तेबा कैसे करेंगे, हम इनकी कदर कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे, क्या तरीका होगा इसके लिए। जी फरहान,
जैसे कॉपी के
फिर हम
रोने
सीखेंगे, ठीक है। ये जवाब है इसका कि हम इनके आसार का इल्म हासिल करेंगे, इनके तरीकों का इल्म हासिल करेंगे। हम जितना ज्यादा इनको पहचानेंगे, जितना ज्यादा इनके तरीकों का इल्म हासिल करेंगे, उतना ही हम उसके ऊपर अमल भी कर सकेंगे। अगर आपके पास इल्म ही नहीं है तो फिर आप अमल किस चीज पे करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये लिखा हुआ है, सही है। तो इस वजह से जो हमारी क्लास है ना, ये हमारे लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि हम इनका इल्म हासिल कर रहे हैं इनके बारे में, ठीक है। तो हमें गौर से सुन करके ज्यादा से ज्यादा इसको समझना, बल्कि सवाल करें कि इस बात का क्या मतलब था, इस बात का क्या मतलब था, ठीक है। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में हम बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं, अब आखिर में उनके वफात के बारे में चीजें पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को अपनी वफात से पहले फिर अपने पास बुलाया, ठीक है ना। अब तय हो गया कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बनेंगे, मुसलमानों में भी ऐलान कर दिया। अब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को बुला रहे हैं और उनसे फरमाया कि मैंने तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्हाब पर खलीफा मुकर्रर किया है, ठीक है। यानी मामूली लोगों के ऊपर मैंने तुम्हें लीडर नहीं बनाया, ये वो लोग हैं जो कि जैसे वो अब्दुल्लाह बिन मसूद ने फरमाया, दीज आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल, मैंने इनके ऊपर तुम्हें एक अमीर बनाया है, ठीक है। मैं तुम्हें तकवा और परहेजगारी की वसीयत वसीयत करता हूँ, तकवा की, अल्लाह ताला से डरने की वसीयत करता हूँ। ए उमर, यकीन जानो कि अल्लाह का जो हक रात का है वो उसको दिन में कबूल नहीं करेगा, ठीक है। रात की नमाज, ये नहीं कि ईशा की नमाज जो है वो आप जोहर के वक्त में पढ़ना शुरू हो जाए तो वो कबूल हो जाएगी, कजा तो होगी लेकिन ईशा तो नहीं होगी ना, अदा तो रात की वक्त रात की नमाज रात में ही होगी। उसी तरह अल्लाह ताला का जो दिन में हक है वो अल्लाह ताला रात में कबूल नहीं करेगा ना। यानी हर चीज का एक वक्त होता है, हर चीज का एक मौका होता है, ठीक है। तो फरमाया कि अल्लाह ताला नफिल उस वक्त तक कबूल नहीं करेगा जब तक तुम फर्ज अदा ना कर लो, ठीक है। यही बात जो हमारे शायर फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान फर्ज को अहमियत नहीं दे रहा और उसको अदा नहीं कर रहा तो उसकी नफल कबूल नहीं है, ठीक है। तो हमारे ऊपर फर्ज सबसे पहले है और उसके बाद फिर नफल पढ़ना भी है, कि पढ़ना चाहिए ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। ए उमर, क्या तुम देखते नहीं कि तराजू उन्हीं लोगों की भारी है कि जिनकी तराजू कयामत के दिन हक की पैरवी में भारी हो, और हक यही है कि कल कयामत के दिन जिस तराजू में हक के सिवा और कुछ नहीं होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि जिन्होंने नेक आमाल किए होंगे उनका जो मीजान होगा, तराजू होगा, बैलेंस होगा, वो भारी होगा क्योंकि नेक आमाल रखे जाएंगे, ठीक है। और जिन लोगों के बुरे आमाल होंगे, नेक आमाल कम होंगे, तो उनका तराजू जो है ना वो हल्का होगा। व्हाट डू यू मीन? तराजू के दो पलड़े होते हैं, ठीक है। राइट वाला पलड़ा जो है उसके ऊपर नेक अमाल रखे जाएंगे और लेफ्ट के ऊपर जो है वो बुरे अमाल रखे जाएंगे। तो पलड़ा भारी होने का मतलब ये है कि राइट वाला पलड़ा, राइट वाला जो बैलेंस है वो भारी है, ठीक है। अगर उसके अंदर नेक अमाल नहीं है तो फिर वो वाला भारी नहीं होगा बल्कि लेफ्ट वाला भारी होगा। उसका जिक्र नहीं किया लेकिन अज्यूम यही है कि लेफ्ट वाला भारी होगा बुरे अमाल की वजह से। तो भारी उसी को होना चाहिए, राइट वाले पलड़े को। जो लोग बातिल की पैरवी करेंगे कयामत के दिन उनकी तराजू हल्की होगी, और जिस तराजू में बातिल के सिवा कुछ ना हो तो उसे हल्का ही होना चाहिए, ठीक है। बातिल तो तोलने की चीज ही नहीं है ना, उसकी तो कोई वजन ही नहीं है, तो फिर ठीक है। और उन्होंने कुछ और भी नसीहतें करी और फिर फरमाया कि उमर, अगर तुमने मेरी नसीहतें याद रखी ना तो फिर तुम्हारे लिए मौत सबसे ज्यादा महबूब चीज होगी। यू विल स्टार्ट टू लाइक डेथ। क्यों? इसलिए कि मरने के बाद जो है ना फिर तुम्हारे तुम्हारा आराम का वक्त शुरू हो जाएगा। और अगर तुमने नेक आमाल नहीं किए, मेरी नसीहत पे अमल नहीं किया, तो मरने के बाद कौन सा वक्त शुरू हो जाएगा?
बिल्कुल
पिटाई का वक्त शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आराम के वक्त के लिए तो हम वेट करते हैं ना भाई, जो बहुत थका हुआ हो तो वो फिर इंतजार करता है कि आज कब मेरा आराम का वक्त आएगा, कब मुझे जो है वो सुकून मिलेगा। तो अगर तुमने मेरी नसीहत याद रखी तो मौत तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा महबूब होगी, और मौत एक ऐसी चीज है कि जिसको तुम हरा तो सकते नहीं हो। ऐसा तो नहीं है कि मौत का फरिश्ता तुम्हारे पास आएगा और तुम कहोगे नहीं नहीं अभी मैं तैयार नहीं हूं, मैं नहीं जा रहा, ऐसा तुम कर ही नहीं सकते। तो बेहतर ये है कि मेरी बात मान लो और मौत की तैयारी शुरू कर दो और मौत को अपना महबूब बना दो। फिर ये भी फरमाया कि मुसनब बिन हारिसा रजी अल्लाह ताला अन की मदद के लिए सब काम छोड़कर अपनी मजीद फौज इराक रवाना करना, ठीक है। मुसनब बिन हारिसा रजी अल्लाह ताला के बारे में पिछली दफा भी हमने कुछ पढ़ा था, लेकिन जस्ट एज ए रिमाइंडर कि ये वही सहाबी थे कि जो के ईरान और इराक के बॉर्डर पे जो कबाइल थे ना उनके ये सरदार थे, और इन्होंने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह से रिक्वेस्ट की थी कि ईरान वाले हमारे ऊपर हमला करते रहते हैं, हमें तंग करते रहते हैं, तो आप हमें फौज भेजिए हमारे लिए ताकि हम ईरान वालों को जवाब दें। तो जैसे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह फितनों से फारिग हुए थे तो फौरन फिर हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा था मुसनाद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु की मदद करने के लिए। उस वक्त तक इनको फरमाया था कि तुम गुरिला वॉरफेयर जारी रखो उन लोगों के साथ, ठीक है। तो मुसनाद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु की मजीद मदद के लिए फौज की वसीयत भी फरमाई उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को। इन कामों से फारिग होकर, यानी जब खिलाफत का काम उन्होंने कंप्लीट कर लिया, फौज का भी हुक्म दे दिया भेजने के लिए, अब जो है ना उन्होंने फिर पर्सनल हालात के ऊपर नजर डाली और उन्होंने पूछा कि जब से मैं खलीफा बना हूं उस वक्त से मुझे अब तक कितना वजीफा मिला है, कितना स्टाइपेंड, ठीक है। वजीफा क्या चीज होती है? वजीफा किसी भी ऐसी चीज को कहते हैं कि जो कि रेगुलरली पाबंदी के साथ आप करते हो या आपके साथ की जाती हो, उसको वजीफा कहते हैं। एनीथिंग, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर आपने सुना होगा कि जब हम किसी शेख से बैत करते हैं तो फिर हमें मामूलात बता दिए जाते हैं। ये मामूलात क्या होते हैं? डेली करने की चीज होते हैं, तो इस वजह से इनको भी वजीफा कहा जाता है। कुछ आंटियां अम्मी लोग बहुत ज्यादा और कुछ अंकल्स भी जो है वो बहुत ज्यादा वजीफा पढ़ते हैं। कुछ जो है वो कोई सूरह यासीन का वजीफा पढ़ रहे हैं, कोई जो है दूसरा किस्म का वजीफा पढ़ रहे हैं। तो वजीफा का मतलब ये है कि जो रेगुलरली काम किया जाए ना, ठीक है। इसी वजह से जो सैलरी मिलती है या जो स्टाइपेंड मिलता है तो उसको भी वजीफा कह दिया जाता, ठीक है। तो इन्होंने पूछा कि मुझे माल गनीमत से कितना वजीफा मिला है, ठीक है। वजीफे की स्टोरी ये है कि जब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला खलीफा बन गए थे, इनके ऊपर हाथ पे बैत कर ली थी ना, तो अब अगले दिन इन्होंने अपने कपड़े वपड़े जो वो बेचा करते थे, इनकी दुकानें होती थी और इनकी कुछ फैक्ट्रीज वगैरह होती थी, ठीक है। तो ये रोजाना इनका ये था तरीका कि भी घर से निकलते थे और जो कपड़े उनको बेचने होते थे, जो चीजें अपनी दुकान में ले जानी होती थी, वो उठा करके लेके जा रहे होते थे। तो जब ये खलीफा बन गए ना, तो अगले दिन फिर ये वही कपड़े वपड़े अपनी चीजें उठा करके दुकान जा रहे थे, बाजार जा रहे थे। तो रास्ते में हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु और हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह रज़ियल्लाहु ये दोनों मिले इनको। उन्होंने कहा कि खलीफतुल मुस्लिमीन, आप किधर जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैं तो अपनी दुकान पे जा रहा हूँ, बाजार जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आप बाजार जा रहे हैं, अब तो आप खलीफा बन चुके हैं, अगर आप बाजार जा करके काम करते रहेंगे तो फिर खिलाफत वाला काम कौन करेगा? खिलाफत वाला काम क्या होता है? फौजों की निगरानी करना और जो है वो लोगों के मामलात को देखना, डिसिप्लिन को मेंटेन करना, आपस में कोई जो है वो अगर लड़ाई झगड़ा कुछ हो जाए तो उसको जो है वो रिजॉल्व करना, ठीक है। बहुत सारे ये काम होते हैं और मुस्तकिल के काम होते हैं। दिस इज अ 24 आवर जॉब, ठीक है ना, 24 आवर जॉब। इसके लिए बकायदा कोई टाइम भी नहीं होता, 9 to 5 जॉब नहीं होती, ये 24 आवर। आजकल व्हाट्सएप के जमाने में तो पक्का 24 आवर्स हो गए, सही है। तो उसके लिए आप किधर से वक्त निकालेंगे? आपकी जिंदगी में वही 24 घंटे हैं। ये नहीं कि पहले आपके जिंदगी में 24 थे, अब जो है वो खलीफा बनने के बाद 48 आवर्स हो गए आपके दिन के अंदर, नहीं, वही 24 आवर्स हैं। तो आप जो है ना ये काम छोड़ दें और बैतुल माल से आप वजीफा लेना शुरू करें, ठीक है ना, वजीफा लेना शुरू करें और उससे अपने काम चलाएं। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसकी यानी इस बात को तस्लीम कर लिया, कंप्लीटली सेंसिबल बात थी, मेक सेंस। तो उन्होंने फिर वजीफा कबूल तो कर लिया था, लेकिन इनका वजीफा जो था वो बहुत कम था, ज्यादा पैसे नहीं लेते थे, ठीक है ना, बहुत ही जो इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए था। तो एक दफा इनकी जो अहलिया थी उस वक्त गालिबन हजरत अस्मा बिनते कनीस हैं, अमीस हजरत, तो उनके बारे में किताबों में लिखा है एक दफा ना उनका दिल चाहा कि भाई मुझे हलवा खाना है, सही है, मीठी कोई चीज खानी है। अरबी में मीठी चीज को हलुवतन कहते हैं या हलवा कहते हैं, हम भी इसी में हैं, महलबिया तो सऊदी लोग बोलते हैं, खैर हलवा, एनीवे तो हलवा खाना है। अब हलवा कैसे बनाएं भाई? तो उसके लिए जो है ना वो कुछ पैसे वैसे चाहिए होते हैं, कुछ चीजें खरीदनी पड़ती हैं उसके लिए, तो वो तो थे नहीं। तो इन्होंने ना फिर पैसे जमा करने शुरू कर दिए। तो जो वजीफा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को मिलता था वो उनको भी दे देते थे कि भाई घर का काम काज जो है तुम इसे चलाओ। तो उन्होंने इसमें से थोड़ा थोड़ा जो है ना वो सेव करना शुरू कर दिया, और कुछ अरसे के बाद जब इतना सेव हो गया ना कि वो हलवा बना सकती थी, तो उन्होंने जो है वो हलवा बनाया, खुद भी खाया और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को भी पेश किया खाने के लिए कि जी मैंने हलवा बनाया। तो उन्होंने पूछा अबू बकर सिद्दीक, तुमने ये हलवा कैसे बनाया? तो उन्होंने कहा भाई मैंने जो है वो सेविंग्स करी थी और सेविंग्स से फिर मैंने हलवा बनाया। अबू बकर सिन्हा, अच्छा इसका मतलब ये है कि जो हमें वजीफा मिलता है ना वो हमारी जरूरत से ज्यादा है, तभी तो तुमने सेव किया। अगर इतना ज्यादा ना होता तो तुम सेविंग कैसे कर पाती, है ना, वो तो खर्चे में खत्म हो जाता। इसका मतलब ये है कि मुझे अपना वजीफा कम करने की जरूरत है। उन्होंने उसको और कम करवा दिया। ठीक है जी,
कि वो
हाँ, तो जितना भी उन्होंने सेव किया था उतना जो है ना अपने वजीफे में से अबू बकर सिद्दीक पता उन्होंने कम करवा दिया। अच्छा, तो बहरहाल ये वजीफा देना शुरू हो गए और उन्होंने अपनी जो जॉब वॉब थी वो खत्म कर दी। ठीक है, अच्छा तो उन्होंने पूछा कि मुझे टोटल कितना वजीफा मिला है। ठीक है, जैसे महीने में इतने मिलते थे दिरहम, तो उनको ऐड करके बता दिया। वो तो खर्च हो गए थे लेकिन ऐड करके बता दिया खादिम ने कि 6,000 दिरहम जो है ना वो इस 2 ढाई साल की जो आपकी खिलाफत थी उसके अंदर आपको मिले। तो उन्होंने फरमाया कि मेरी एक जमीन है अभी भी, तो उसको फरोख्त करके ये माल जो है ना जितना 6,000 दिरहम मुझे मिले हैं ये बैतुल माल में वापस जमा करा। ठीक है ना, यानी इवन जो मैंने वजीफा लिया है जो कि मेरा राइट था वो भी मैं बैतुल माल में वापस कर देना चाहता हूँ। इसके बाद फरमाया कि मेरे खलीफा बनने के बाद से लेकर अब तक मेरे माल में कितना इजाफा हुआ है, मेरे ओवरऑल जो जो वेल्थ होती है उसमें कितना इजाफा हुआ है। तो आपको बताया गया कि आपके पास एक हबशी गुलाम है जो बच्चों को खिलाता है और तलवारें तेज करता है, एक ऊंटनी है जिस पर पानी लाया जाता है, एक चादर है जिसकी कीमत 125 रुपए के लगभग है। यानी खिलाफत मिलने से पहले आपके पास ये चीजें नहीं थी, खिलाफत मिलने के बाद आपके वेल्थ के अंदर ये चीजें ऐड हुई हैं। तो ये सुनकर आपने इरशाद फरमाया कि मेरी वफात के बाद ये चीजें खलीफा वक्त को भेज दी जाए, यानी उमर रज़ान को भेज दी जाए। जब ये चीजें हजरत उमर रज़ान के पास पहुंची ना तो वो उनको देख करके रोना शुरू हो गए और कहने लगे कि ए अबू बकर, आप अपने बाद में आने वालों के लिए बहुत मुश्किल कर गए हैं। यानी आपने एक ऐसी प्रेसिडेंस जो है वो सेट कर दी है कि अपने पास कुछ भी नहीं रखना, जो एडिशनल आ भी गया वो भी आपने मुसलमानों को वापस कर दिया। ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, अब आइंदा आने वाले ये कैसे काम करेंगे ना, आपके जैसे तकवा और मुकाम तो किसी और का नहीं है। फिर इन कामों से फारिग होकर अबू बकर सिद्दीक खतानों ने अपने घर के मामला के जिम्मेदार हजरत मुईकीब रजील्ला से फरमाया कि ए मुईकीब, तुम मेरे घर के इंतजाम करने वाले हो, बताओ मेरा और तुम्हारा क्या हिसाब किताब है। उन्होंने फरमाया कि 25 दिरहम जो है ना वो आपने मुझसे उधार लिए हुए थे लेकिन मुझे वापस नहीं चाहिए, मैंने आपको माफ कर दिया, मुझे नहीं चाहिए 25 दिरहम। ठीक है, तो उन्होंने फरमाया कि चुप रहो, मेरे आखिरत के तोशे में कर्ज शामिल ना करो। ठीक है, यानी मैं तुम्हारा कर्ज लेकर के दुनिया से नहीं जाना चाहता। हालांकि उन्होंने माफ कर दिया था लेकिन इनका इतना ज्यादा तत्वा था ना कि ये इवन इसको भी कबूल नहीं करना चाहते थे। ठीक है, तब मुईकीब रोने लगे। उन्हें रोते देखकर फरमाया कि रो नहीं, सब्र करो, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं ऐसी जगह जा रहा हूं जो मेरे लिए बेहतर और पायदार है। ठीक है, मुझे अब यू नो माई आईज आर सेट, वो अगले जहान के ऊपर सेट हो चुकी है और वहां पर मुझे अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद है। इसके बाद हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा को बुलाया और उन्हें हुक्म दिया कि आप मुईकीब को 25 दिरहम अदा कर दें मेरी तरफ से। फिर पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितने कपड़ों में कफन दिया गया था, यानी कितने पीसेज ऑफ क्लॉथ में ना, एक चादर, दो चादर, तीन चादर, इस तरह से कहते हैं कितने कपड़े। तो आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया कि आप को 3 चादरों के अंदर कफन दिया गया था। तो बगैर सीधे खतरा ने फरमाया कि मेरे ऊपर मैं जो पहना हुआ हूँ ना वो 2 चादरें हैं, बड़ी फटी पुरानी सी बोसीदा सी 2 चादरें वो पहने हुए थे, यानी एक ऊपर से पहनते थे एक नीचे से तहबंद के तौर पर पहनते थे। तो तीसरी जो चादर है ना वो तुम बाजार से खरीद देना और मुझे इन 2 चादरों में जो मैं पहना हुआ और उस तीसरी के अंदर कफन दे देना। आयशा सीधे ने फरमाया कि अबू जान, हमारे पास हैं इतने पैसे, मेरे पास हैं, मैं आपके लिए 3ों चादरें नहीं खरीद सकती। तो फरमाया कि नहीं, नए कपड़ों की जरूरत जो है ना वो जिंदा लोगों को होती है, मैं तो मर रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ अपने परवरदिगार के पास, मुझे क्या जरूरत है नए कपड़ों की, मेरे पास जो है और तीसरा जो है वो खरीद लेना, वो तो अब है ही नहीं तो क्या करें भाई, तीसरा तो खरीदना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर अपनी बीवी अस्मा बिनते अमीस रजी अल्लाह तआला को वसीयत की कि तुम मुझे गुसल देना। मरने के बाद मियत को गुसल दिया जाता है, तो बीवी जो है वो शोहर को गुसल दे सकती है। तो उन्होंने फरमाया कि मुझसे ये नहीं होगा, यानी गम की वजह से मैं आपको कैसे गुसल दूंगी, मुझसे नहीं होगा। उन्होंने फरमाया नहीं, तुम ही देना, तुम्हारा बेटा अब्दुल रहमान तुम्हारी मदद करेगा। अब्दुल रहमान इब्न अबू बकर के एक बेटे थे, मोहम्मद बिन अबू बकर इनके दूसरे बेटे थे, और एक और भी। तो आज फिर पूछा कि आज कौन सा देना है, तो लोगों ने बताया कि आज पीर का देना है। तो फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात किस दिन हुई थी, तो बताया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात पीर ही के दिन हुई थी। तो उन्होंने कहा कि बस मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी वफ़ात भी आज ही के दिन होगी और मेरी कब्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के साथ बनाई जाए। इन वसीयतों से फारिग हो ही थे कि आप पर मौत के आसार जारी हो गए। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा जो है वो इनके गम में वो अशार पढ़ना शुरू हो गई जो कि वो नबी अलैहि सलाम के लिए पढ़ती। ठीक है, तो वो जब इन्होंने सुने तो फरमाने लगे कि नहीं, ये जो शान जो तुम बयान कर रही हो ना अपने शेरों में, ये तो नबी अलैहिस्सलाम की शान है, मेरे लिए ये वाले शेर तुम मत पढ़ो। ठीक है ना, मैं तो उम्मत ही हूँ, मैं नबी कोई थोड़ी हूँ कि तुम इस तरह की बातें कर रही हो। इतने में मौत की घड़ी आ गई, एक हिचकी आई और खिलाफत और इमामत का ये आफताब दुनिया से रूपोश हो गया। आपके आखिरी अल्फाज ये थे जो कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के थे, तवफ्फनी मुस्लिमों व अल्हिकनी बिस्सालिहीन, कि अल्लाह मुझे मुसलमान होने की हैसियत से, मुसलमान होने की कैफियत में मौत अता फरमा और मुझे नेक सालेह लोगों के साथ मिला दे। ठीक है, मेरा हशर उनके साथ फरमा दे। वफात कब हुई? 22 जमादियुस्सानी 13 हिजरी बरोज पीर मगरिब और इशा के दरमियान हुई। ठीक है, यानी पीर का जो दिन था इस्लामिक हिसाब से वो शुरू हो चुका था, और 13 हिजरी डेट जो थी वो एग्जैक्टली वो नहीं थी जैसे 12 रबीउल अव्वल वाली डेट, ये डेट थी नहीं। ठीक है, लेकिन दिन जो है वो पीर का था। कुछ अर्से पहले एक बात बहुत मशहूर हुई थी कि वफात के बाद मियाँ बीवी के लिए नामहरम हो जाता है, नहीं ऐसा नहीं होता। ठीक है, रात ही में आपकी अहलिया हजरत अस्मा बिनत अमीस रज़ी अल्लाह अन्हा ने वसीयत के मुताबिक आपको गुस्ल दिया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने नमाज जनाजा पढ़ाई। हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत तलहा और अब्दुलरहमान इब्ने अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा अन्हुम कब्र में उतरे और आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र के पहलू में लिटा दिया, इस तरह के आपका सर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना मुबारक तक आ गया। शाना कहते हैं कंधों। ठीक है, तो इवन कब्र भी जो है ना वो बिल्कुल बराबर बराबर नहीं बनाई गई कि उनका सर और इनका सर जो है वो बिल्कुल एक लेवल पर हो, बल्कि इनका जो है ना वो नीचे रखा गया। और इसी तरीके से इनके बाद आपको पता है कि उमर रज़ी को भी इसी जगह पर दफन किया गया, तो उमर रज़ी का जो सर है वो इनके कंधों तक है। तो ऐसे ऐसे फिर ऐसे। ठीक है, और चेहरा मुबारक दोनों का, बल्कि तीनों का चेहरा मुबारक जो है वो क़िबले की तरफ है, क्योंकि जब कब्र के अंदर लिटाते हैं तो पीठ के बल नहीं लिटाते बल्कि राइट करवट। ठीक है, तो हमें तो सोना भी राइट करवट ही चाहिए जितना बर्दाश्त कर सकते हैं हमारे कंधे, तो हमें राइट कंधे के ऊपर सोना चाहिए, तो मरने के बाद ही आसानी होगी, दर्द नहीं होगा। खैर मजाक कर रहे। अच्छा, वफात के बाद आपकी उम्र 63 यानी 63 ईयर्स थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात भी इसी उम्र में हुई थी और आपकी खिलाफत की कुल मुद्दत 2 बरस 3 महीने और 11 दिन। ठीक है, कमरी एतबार से 2 साल 3 महीने और 11 दिन। अब इसके
तो
बाद जब आपका इंतकाल हो गया तो अली रज़ी अल्लाह तआला तशरीफ लाए और उन्होंने जो बातें इनके बारे में कही ना वो हमारे लिए बड़ी अहम है, क्योंकि हमें सहाबा के बारे में और खुसूसन सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की जरूरत। तो अली रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने इतनी प्यारी प्यारी बातें फरमाई, तो वो हम जरूर से इसको सुनेंगे। आपने फरमाया कि ए अबू बकर, अल्लाह तुम पर रहम करे, आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब थे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे मोहब्बत करते थे और काबिले एतमाद साथी थे, आपके मुशीर और राजदार थे, आप सबसे पहले इस्लाम लाए, आप सबसे ज्यादा मुखलिस मोमिन थे, आपका यकीन सबसे ज्यादा मजबूत था। आपका यकीन यानी नबी अलैहि सलाम के ऊपर एतमाद आपका सबसे ज्यादा मजबूत था। ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम भी आप पर एतमाद सबसे ज्यादा करते थे और आप भी नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर सबसे ज्यादा एतमाद करते थे। आप सबसे ज्यादा अल्लाह का खौफ करने वाले थे। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है अतका अबू बकर सिद्दीक को सबसे ज्यादा मुत्तकी, राइट। तो अल्लाह ताला तो सिर्फ ऊपर से कुछ थोड़ी देखते हैं, अल्लाह ताला तो अंदर से भी बंदे को देखते हैं। तो अल्लाह ताला अगर किसी को अतका फरमा दें तो फिर उसके ना तो स्टैंप लग गई ना फिर उसके मुत्तकी होने के ऊपर। अतका का मतलब होता है सबसे ज्यादा मुत्तकी। अल्लाह के दीन पर अमल के बारे में सबसे ज्यादा बेनियाज, यानी आप दूसरों की परवाह करने वाले नहीं थे, ठीक है। यानी लोग कुछ भी कहें लौमत अल्लाइम कोई परवाह नहीं करने वाला, मलामत करने वालों की कोई परवाह नहीं करने वाला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक सबसे ज्यादा बाबरकत, साथ देने में उन सबसे बेहतर, फजीलत में सबसे बढ़कर, पेश कदमियों में सबसे अफजल और बरतर, दर्जे में सबसे ऊंचे और कुर्ब के एतबार से अहद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा करीब। पेश कदमियों में सबसे अफजल और बरतर का मतलब क्या है कि इसका मतलब ओवर स्मार्ट बनना नहीं होता, ये हर चीज में जो है ना वो दूसरों से आगे बढ़ने की कोशिश करना नहीं, ठीक है। पहले भी हम बहुत पहले की बात है, मुझे अच्छी तरह याद है, हम इस क्लास के अंदर ये बात कर चुके हैं कि आगे बढ़ने के दो अंदाज होते हैं, ठीक है। एक अंदाज ये होता है कि बस दूसरों को हराने की कोशिश करना और आगे बढ़ जाना, ठीक है। दूसरों को बस यानी ऑलवेज मैं उससे आगे बढ़ जाऊँ, मैं इससे आगे बढ़ जाऊँ, मैं इससे भी आगे बढ़ जाऊँ, इससे भी आगे बढ़ जाऊँ। जैसे कि फुटबॉल में फिर वही बात आ गई, कुछ साथी करते हैं इधर टुटा मारा, इधर जो है उसको अंगड़ी मारी, इधर टांग लड़ाई, बस मैं ये सही तरीका नहीं है, ये बहुत बुरा तरीका है, ठीक है। और एक दूसरा तरीका ये होता है कि फोकस्ड ऑन व्हाट
बहुत
जी,
अच्छा
फोकस्ड ऑन द गोल, बल्कि जो हुक्म दे रहा है ना, जो पर्पस है, जो गोल है, उसके ऊपर फोकस होना और उसकी बात को इतना तवज्जो से सुनना कि जैसी ही बात आई वैसे ही जो है ना वो भागना, ठीक है ना, वैसे ही जो है वो काम करने की कोशिश करना। तो ये बिल्कुल दो डिफरेंट चीजें हो गई। एक में फोकस कौन है, साथ वाले लोग हैं, और एक में फोकस कौन है, अमीर है, बिल्कुल डिफरेंट, ठीक है। तो ये अबू बकर सिद्दीक रहता है ना, और जितने भी मुखलिस लोग होते हैं ना, खालिस लोग, उनका फोकस गोल पर होता है, ठीक है ना, और जो गैर खालिस होते हैं उनका फोकस दाएं बाएं वालों के ऊपर होता है, इनको गिराओ इनको गिराओ, ठीक है। तो ये बहुत बुरी चीज है। हसद भी दरअसल यही है, हसद भी ना इसी तरह की कैफियत को कहते हैं कि यार मुकल्ला। हसद का मतलब ये नहीं होता, कुछ कह रहे, हसद का मतलब ये नहीं होता कि जो नेमत उसके पास है वो नेमत मुझे भी मिल जाए, ये हसद नहीं होता कि जो नेमत किसी के पास है वो नेमत मुझे भी मिल जाए, बल्कि हसद ये होता है कि उसके पास से नेमत खत्म हो जाए और फिर मुझे मिल जाए, ये हसद होता है। और ये हसद इतनी बुरी चीज है, नबी ने फरमाया कि नेकियों को ऐसे खत्म कर देती है जैसे आग जो है ना सूखी लकड़ी को जला के खत्म कर देती है ना, उस तरह से ये नेकियों को खत्म कर देती है, ठीक है। और आपको पता है तसस्सुन नबीयीन की क्लास से भी कि सबसे पहला गुनाह जो किया गया वो हसद का गुनाह, ठीक है। तो अबू बकर सिद्दीक रहता जो है ना वो, अब वो गजवा तबूक वाला मामला जैसे, ठीक है, कि नबी फरमाया कि आप ही लेकर आओ जो कुछ दे सकते हो मुसलमानों के लश्कर के, लेकर के आओ। तो अब ये जो थे ना, ये सब कुछ लेकर के आ गए और सबसे ज्यादा लेकर के आ गए, ठीक है। सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस वाला जो अल्लामा इकबाल का शेर आपको सुनाया था। बहरहाल तो आनंद सलम से सबसे ज्यादा करीब, आनंद सलम से इंतकाल की डेट 13th, नहीं सॉरी 22nd जमादी उस्सानिया, 13th हिजरी, 22 जमादी उस्सानी, अभी जमादी उस्सानी चल रहा है, अव्वल चल रहा है। हाँ अच्छा, बस अल्लाह जल्ला शानहु इस्लाम और अपने रसूल की तरफ से आपको जजाय खैर अता फरमाए। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आहद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक उस वक्त की जब लोगों ने आपको छुटलाया, ठीक है। बाकी सारे जो है वो नबी अलैहि सलाम के खिलाफ थे, सिर्फ एक आप ही थे मर्दों में जिन्होंने आपकी तस्दीक करी थी कि आप सच्चे हैं। गिबता होता है हजरत की कोई नेक है तो मैं भी ऐसी नेक बनूं जी, उसको हसद नहीं कहते, उसको गिबता कहते हैं जी। अच्छा, इसलिए अल्लाह ताला जल्ला शानो आपको अपने कलाम में सिद्दीक फरमाता है, यानी यूं फरमाया कि सच्चाई लाने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और उनकी तस्दीक करने वाले अबू बकर हैं। सूरह जुमर की एक आयत की तरफ, जुमर की एक आयत की तरफ इशारा है। आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस वक्त गम ख्वारी की जब लोगों ने आपसे बुखल किया। आप नागवार बातों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस वक्त भी खड़े रहे जब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलग हो गए। आपने सख्तियों में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सुहबत और रफाकत का हक अदा किया। ठीक है, जब लोग अलग हो गए, इसमें गालिबन इशारा जो है वो सुलह हुदैबिया के वाकये की तरफ, जब बाकी सहाबा जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को समझ नहीं पा रहे थे, अबू बकर सिद्दीक रहता उस वक्त भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कामिल एतमाद किया और दूसरों को भी समझाया और बाकी लोग मान गए। फिर उसके बाद आप खानी असनैन यानी दो में से दूसरा, राइट, जब गार में थे, रफी के गार थे, सानी असनैन थे और आप पर सकीना नाजिल हुई। आप हिजरत में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे। आप हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे खलीफा बने कि खिलाफत का हक आपने अदा कर दिया। उस वक्त खलीफा बने जब लोग मुर्तद हो गए। आपने उस वक्त चुस्ती दिखाई जबकि लोग दूसरे सुस्त हो गए। आपने उस वक्त जंग की जब दूसरे आजिज आ गए। आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को उस वक्त थामे रखा जब लोग पीछे हट गए थे। ये सब हम पढ़ चुके हैं पीछे कि कितना शदीद फितने का दौर था और दूसरे सहाबा हत्ता के उमर रज़ी अल्लाह तआला जैसे जो अजीम हिम्मत वाले थे वो भी जो है ना वो थोड़ा सा इंतजार करने के लिए अभी ठहर जाते हैं, अभी ठहर जाते हैं, बाद में देखेंगे। नहीं उमर, अभी नहीं, मैं अभी ही लड़ूंगा। आप बिला नज़ा और बिला तफरका खलीफा हक थे। अगर इस बात से मुनाफिकों अगरचे के इस बात से मुनाफिकों को गुस्सा था, कुफार को रंज था और हासिद कराहत में मुब्तला थे और बागियों को गुस्सा था, यानी ये लोग आपकी खिलाफत से राजी नहीं थे लेकिन बाकी जितने मुमिनीन थे वो आपकी खिलाफत से राजी थे। आप उस वक्त हक बात पर अड़े रहे जब लोग बुजदिल हो गए थे। आप उस वक्त साबित कदम रहे जब लोग डगमगा गए। आप अल्लाह ताला के नूर को लिए आगे बढ़ते रहे यहाँ तक कि आपकी पैरवी में लोगों ने हिदायत पाई। ये अली रज़ियल्लाहु अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु की शान में तकरीर फरमा रहे हैं उनकी इंतकाल के फौरन बाद। आपकी आवाज उन सबसे नीची थी मगर आपका मर्तबा सबसे ऊंचा था। आपका कलाम सबसे ज्यादा संजीदा था। आपकी गुफ्तगू सबसे ज्यादा दुरुस्त थी। आप सबसे ज्यादा खामोश रहने वाले थे। शुजाअत में सबसे ज्यादा बढ़े हुए थे। मामलात को सबसे ज्यादा समझने वाले थे और अल्लाह की कसम दीन के सबसे पहले सरदार थे। आप मोमिनीन के लिए रहीम बाप थे और जिस चीज का लोगों को अंदाजा भी नहीं था वो उन्होंने पाली, यानी उसको उन्होंने नर्चर किया। लोगों को जिस चीज की अहमियत का जिस अंदाजा नहीं था वो बगैर सिद्दीक ने उसको जो है वो टेक ओवर किया। आप काफिरों के लिए आग की मानिंद थे। मोमिनीन के लिए रहमत और उनसियत और पनाह की जगह थे। आप किसी से जरा भी नहीं डरे, पहाड़ की मानिंद थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बारे में फरमाया कि आप दोस्ती और माली खिदमात के एतबार से सबसे ज्यादा एहसान करने वाले थे। आप जिस्मानी एतबार से अगरचे कमजोर थे लेकिन अल्लाह के मामले में कवी थे। आप में बहुत आजिजी थी, आप में कोई लालच नहीं था, ना मामलात में आप किसी की रियायत करते थे। ताकतवरों से कमजोरों को उनका हक दिलाते थे। आप दुनिया से उस वक्त रुख्सत हुए जबकि रास्ता हमवार हो गया, मुश्किल आसान हो गई, मुखालिफिन शिकस्त खा गए, दीन मजबूत हो गया, मुसलमान साबित कदम हो गए। आपने अपने बाद में आने वालों को थका दिया। आप खैर से कामयाब हो गए। क्या मतलब आने बाद में आने वालों को थका दिया? जैसे भी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि आपने जो स्टैंडर्ड सेट कर दिए ना वो इतने हाई थे कि अब उन तक पहुंचने के लिए आपके बाद में आने वालों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, आप इससे बुलंद बाला हैं कि आप पर रोया पीटा जाए। आपकी मौत को तो आसमान में महसूस किया जा रहा है। हम सब अल्लाह के लिए हैं, उसी की तरफ लौट के जाने वाले हैं। अल्लाह की कजा पर हम राजी हैं, हमने अपना मामला उसके सुपुर्द कर दिया है। अल्लाह की कसम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद आपकी मौत जैसा कोई हादसा मुसलमानों पर कभी नाजिल नहीं हुआ। आप दीन की इज्जत, जाए पनाह और हिफाजत गाह थे। अल्लाह आपको अपने नबी से मिला दे और हमें आपके बाद आपके अजर से महरूम और गुमराह न करे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का ये खुतबा जब तक जारी रहा लोग सुनते रहे। जब आप खामोश हो गए तो लोग बेतहाशा रोना शुरू हो गए, खूब रोए। फिर सबने कहा कि ए अली, आपने सच कहा। नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में एक दफा ये कुरान की आयत नाजिल नहीं, वो कैसे फरमाते हैं कि एक दफा मैंने नबी अलैहिस्सलाम के सामने कुरान मजीद की आयत तिलावत की, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िया फ़ादख़ुली फ़ी इबादी वादख़ुली जन्नती। सूरह फजर की जो बिल्कुल आखिरी आयत है। फिर मैंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी क्या जबरदस्त खूब अल्लाह ताला का इरशाद है। ठीक ऐसे या ये तो नफ्सुल मुतमइन्ना फरमा रहे हैं, तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ ए अबू बकर, जब तुम्हें मौत आएगी उस वक्त जिब्राइल अमीन तुमसे यही कहेंगे। ठीक है, तो इस वक्त जो है ना, जब अली ताला नीचे ऐसी बातें फरमा रहे थे आसमानों के अंदर, ये चल रहा था, या ये तो नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिउ इला रब्बिक, आ जाओ अपने रब की तरफ, राज़ियतन मर्ज़िया, इस तरह से कि तुम्हारा रब तुमसे राजी है, खुश है, और तुम अल्लाह ताला से राजी हो। ठीक है, फ़ादख़ुली फ़ी इबादी, दाखिल हो जाओ मेरे बंदों में, फ़ादख़ुली जन्नती, और मेरी जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के जो कारनामे थे, उनमें से एक बहुत बड़ा कारनामा, एक तो वो था ना कि जो झूठा नबी था उसको कत्ल किया, उसके फितने को ख़त्म किया, जो मानिकी ने ज़कात थे उसके फितने को ख़त्म किया, उनके फितने को ख़त्म किया, और उसके अलावा दूसरे भी जो लोग मुर्तद हो गए थे उन सबको। फिर इसके बाद जो सबसे बड़ा उनका कारनामा था वो क्या था, किसी को पता है सबसे बड़ा कारनामा अबू बकर सिद्दीक़ होता है उनका?
तो
जी, कुरान को कंपाइल करना, जमा करना। ठीक है, कुदरतन हम अपनी अंकल वाली क्लास के अंदर बिल्कुल यही टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तारीख है जमुल कुरान, जमा कुरान, कुरान को जमा करने की तारीख क्या है, क्या हिस्ट्री है। तो उसकी आपको पता ही है, पहले आप लोगों ने सुना था कि जब मुसैलमा कज़ाब से यहाँ यमामा के मकाम पे आकर के साहबा ने जंग लड़ी थी, तो उस जंग के अंदर बहुत बड़ी तादाद में, एक तो 1500 टोटल साहबा शहीद हुए थे, और 500 के करीब जो है ना वो कुरान मजीद के हुफाज शहीद हुए। ठीक है, जिनको के पूरा का पूरा कुरान मजीद हिफ्ज था वो भी शहीद हो गए थे। तो इस जंग के बाद फिर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अबू बकर सिद्दीक रजान के पास तशरीफ लाए और उनसे फरमाया कि इतनी बड़ी तादाद में हुफाज़े कुरान शहीद हो गए हैं, और फिर दूसरी जगहों के अंदर भी थोड़े 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 शहीद हो रहे हैं, तो अगर इस तरीके से लोग शहीद हो गए तो फिर तो हम कुरान मजीद का यानी भूल जाएंगे, मतलब वो तो उनके सीनों में महफूज है, उनके याददाश्त महफूज है, वो दुनिया से चले जाएंगे तो फिर कुरान मजीद तो हमसे रुख्सत हो जाएगा ना। ठीक है, तो हमें जो है ना कुरान मजीद को एक मसहफ के अंदर, एक कॉपी के अंदर, रजिस्टर के अंदर लिख लेना चाहिए। ठीक है, अबू बकर सिद्दीक ने सुना, फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम ने ये काम नहीं किया, मैं कि ये कैसे काम कर सकता, जो काम मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने नहीं किया मैं ये काम कैसे कर सकता। ठीक है, उमर रतान जो है वो लगे रहे, है ना, पीछे लगे रहे अबू बकर सिद्दीक, नहीं ये बहुत अच्छा काम है, ये तो बेहतर ही बेहतर काम है, ये तो अच्छा काम है, इसकी तो जरूरत है। और इतना उन्होंने परसू किया कि अबू बकर सिद्दीक रतान जो है वो बिल आखिर कन्विंस हो गए। ठीक है, यानी उनके सामने भी इसकी जो हकीकत है, इसकी इसकी वैल्यू सिग्निफिकेंस अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने भी खुल गई, और वो राजी हो गए इस बात के ऊपर। ठीक है, लेकिन शुरू में उन्होंने इसका भी इनकार किया, हालांकि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो कोई गुनाह का काम तो नहीं कह रहे थे। ठीक है, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो कॉम्प्रोमाइज करने का भी हुक्म नहीं दे रहे, कभी मशवरा नहीं दे रहे थे, जैसे कि मानी ने ज़कात के मौके पर या दूसरे मौके के ऊपर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आए थे कि अभी जो है वो हम गम में हैं, और अभी अगर हम लश्कर को भेज देंगे तो फिर हम मदीना मुनव्वरा एक्सपोज हो जाएगा और लोग बहुत ही गम का शिकार हैं, तो अभी हम लड़ाई नहीं लड़ते हैं, राइट। तो उस वक्त तो चलो वो का सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने बड़ी हिम्मत दिखाई और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को मना कर दिया, नहीं है उमर, तुम जो है वो अभी इतने कमजोर हो गए हो, और जबकि तुम जहालत के अंदर इतने ज्यादा मजबूत हुआ करते थे, ठीक है मैं तो लश्कर भेजूंगा। बात नहीं मानी उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की। ठीक है, इस मौके पर उमर रतान जो है वो कोई गलत काम का तो मशवरा नहीं दे रहे थे, बिल्कुल साफ साफ सीधा सीधा अबू बकर सिद्दीक रतानों को क्या मशवरा दे रहे थे कि कुरान मजीद को कंपाइल करना है, कुरान मजीद को जो है वो कंपाइल करना है। ठीक है, लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु की जो नंबर वन प्रायोरिटी थी ना, ये हमारे समझने की बात, ठीक है, कि उनके नजदीक सबसे अहम चीज क्या थी, वो आप बता दें, सबसे अहम चीज क्या थी? क्या
नबी
कि नबी अलैहिस्सलाम के तरीके को जैसे हमने नबी अलैहिस्सलाम से लिया है बिल्कुल वैसे ही रखना, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने किसी काम को किया, ये हमने करना, उसमें कोई रद्दोबदल नहीं करना, ठीक है। हत्ता के जकात के मामले में भी आपको पता है कि उन लोगों ने जकात देने से इनकार नहीं किया था, उन्होंने जकात निकालने से इनकार नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ जकात मदीना तैयबा पहुंचाने से इनकार किया था कि हम खुद ही जकात निकालेंगे, खुद ही अपने गरीबों में बांट देंगे, गरीबों का फायदा हो जाएगा, अल्लाह के बंदों का फायदा हो जाएगा। अबू बकर सिद्दीक ने उसको भी कबूल नहीं किया कि नहीं, जैसे नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में बैतुल माल में आती थी जकात, वैसे ही अभी भी बैतुल माल में जकात आएगी, इतना से भी फर्क मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, ठीक है ना। तो यहां पर भी जो है ना, ये नहीं था कि भाई कुरान की हिफाजती का तो काम नहीं, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या थी कि जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने रखा वैसे ही मैं भी रखूंगा, ठीक है। तो अब ना उसके खिलाफ उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को उनको कन्विंस करना पड़ा, और बहुत कोशिश करने के बाद फिर ये तैयार हो गए, और जब तैयार हो गए तो फिर तैयार हो गए, बस खत्म बात, अब कन्विंस हो गए, ठीक है। अब उसके बाद फिर उन्होंने जैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु, जैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु को, ठीक है ना, ये एक यंग सहाबी थे, जैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु का तो इंतकाल हो गया था, उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद जो थे, तो जैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया और उनसे कहा कि आप जो हैं वो हाफिज़ कुरान हैं और हमें आपके ऊपर पूरा का पूरा एतमाद है कि आप जो है ना वो बहुत अच्छे से काम करेंगे, ठीक है। ये यंग भी थे और ये जीनियस भी थे, और नबी अलैहिस्सलाम इनसे जो है ना वो एक इसी किस्म का एक काम ले चुके थे पहले भी, ठीक है ना। वो क्या काम ले चुके थे, किसी को होता है, जैद बिन साबित रज़ियल्लाहु से नबी अलैहिस्सलाम ने एक काम लिया था जो कि इस काम से काफी मुशाबहत रखता था कुरान मजीद को जमा करने वाले काम से, एनीवे ऑनलाइन और ऑन साइट फिर हम 10 लोग लेते हैं, इसके बाद 29 हो गया। किसी को याद है जैद बिन साबित रज़ियल्लाहु से नबी अलैहिस्सलाम ने एक दूसरा, अच्छा मैं अगर मैं मुझे बस बिल्कुल अभी ये बात याद आई, हो सकता है मुझे गलत याद आई हो, तो अगर गलत कहूँ तो आप इस्लाह बुला दीजिएगा, ठीक है। कातिबे वही थे, कातिबे वही तो और भी बहुत सारे थे ना, लेकिन एक ऐसा काम इनसे लिया था जो कि किसी और से नहीं लिया था। इनको जहां तक मुझे याद पड़ता है, इस्लाह फरमा दीजिएगा गलत हो, कि इनको नबी अलैहिस्सलाम ने इब्रानी जुबान सीखने के लिए भेजा था, ठीक है, कि आप जो है वो उनकी जुबान सीख करके आए ताकि उनके जो लेटर्स वगैरह हैं वो मैं पढ़ सकूं और उन वो मुझे जो है ना वो धोखा ना दे सके। तो इनको जुबान सीखने के लिए भेजा था, बिल्कुल एक फॉरेन लैंग्वेज ना, एकदम एक नई लैंग्वेज, अरबी से बिल्कुल मुख्तलिफ, ठीक है। और ये जो है ना वो गए और एक हफ्ते के अंदर अंदर पूरी जुबान सीख करके वापस आ गए, ठीक है। तो एक तो ये कि जहीन बहुत थे, नौजवान थे, और दूसरी बात ये है कि नबी अलैहिस्सलाम ने इनसे पहले जो है ना वो एक, ये इसको कहते हैं एकेडेमिक काम, पढ़ने लिखने का काम, राइट, थियोरेटिकल किस्म का काम, लैंग्वेज सीखना जो होता है एक एकेडेमिक काम होता है ना, एकेडेमिक एक्सरसाइज होती है, ठीक है। अब जो है वो कुरान मजीद को जमा करना, ये भी एक लिखाई पढ़ाई वाला काम था, इसका ताल्लुक भी एकेडेमिक्स के साथ था बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इस मामले में भी ऐसा लगता है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी अलैहिस्सलाम की इत्तेबा की, और इसीलिए जैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु, जैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु को ये वाला काम असाइन किया, अल्लाह आलम बिस्सवाब। जी फरहान क्या कह रहे हैं,
कुरान
कुरान की तरतीब क्या थी? तरतीब यानी अंदर जो सूरतें हैं और आयतें हैं वो क्या थी, ठीक है, वो वही थी जो कि अभी है। नबी अलैहिस्सलाम कुरान मजीद की तरतीब जो है ना वो अपनी जिंदगी में बता दी, सहाबों को बता दिया था कि ये आयत इस वाली सूरत में होगी और यहाँ पर होगी, ये आयत यहाँ पर होगी, ये आयत यहाँ पर होगी, ये सूरत पहले होगी, ये सूरत बाद में होगी, इस सूरत का नाम ये होगा, इस सूरत का नाम ये होगा, ये सब नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी में हो चुका था, क्योंकि ये सब जो है ना ये ओरल हुआ था, ये जुबानी हुआ था। नबी अलैहिस्सलाम जो है वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को सुनाते थे, पिछली क्लास में भी बल्कि हसन नबीन की क्लास में बात आई थी, कि दौर हुआ करता था हर साल, जितना कुरान नाजिल हो चुका था वो पूरा का पूरा कुरान नबी अलैहिस्सलाम और जिब्रील अलैहिस्सलाम को सुनाते थे, और आखिरी साल में पूरा कुरान मुकम्मल हो चुका था। तो आखिरी साल में नबी अलैहिस्सलाम ने दो दफा कुरान मजीद जिब्रील अलैहिस्सलाम को सुनाया था। ठीक है, अच्छा, अब इससे या तो इसी मौके के ऊपर या किसी दूसरे मौके के ऊपर, इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि या तो इसी मौके के ऊपर जबकि नबी अलैहिस्सलाम जिब्रील अलैहिस्सलाम को सुना रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना लाउड सुना रहे होंगे कि सहाबा कराम भी सुन रहे हो। ठीक है ना, तो सहाबा कराम को ऐसी तो सारी चीजें पता चली ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, सहाबा कराम सुनते थे फौर से। ठीक है ना, तो सहाबा कराम को भी पता चल गया कि पूरी की पूरी तरतीब जो है वो क्या है कुरान मजीद की। तो ये तो पहले सेट हो चुका था। ठीक है ना, फर्क सिर्फ ये था कि कुरान मजीद लिखा हुआ एक जगह पर नहीं था, कहीं पे जो है वो किसी दरख्त की छाल के ऊपर लिखा हुआ है, दरख्त की जो बार्क होता है उसके ऊपर, कहीं जो है वो हड्डी के ऊपर लिखा हुआ है, कहीं ने किसी ने किसी और चीज के ऊपर लिखा हुआ है, किसी ने कपड़े पे लिखा हुआ है, और सबके पास ना थोड़ा 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 इस तरह से लिखी हुई शक्ल में था। एक पूरा का पूरा कॉपी लिखी हुई शक्ल में किसी के पास मौजूद था। तो ये वाला काम जो है वो जैद बिन साबित रतान को अबू बकर सिद्दीक रतान ने असाइन किया। लेकिन मजे की बात यह कि जैद बिन साबित रतान भी जो है ना वो भी कम नहीं थे, उन्होंने नहीं, उन्होंने कहा आप वो काम कैसे कर रहे हैं जैसे नबी अलैहिस्सलाम, जो नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं किया, उन्होंने भी यही जवाब दिया। ठीक है, उनको भी कन्विंस करना पड़ा, फिर वो भी कन्विंस हो गए, फिर वो भी काम से लग गए। तो ये सारे साहब एक जैसे थे। ठीक है, बहरहाल अल्लाह ताला हमें साहब के जैसे बनने की, मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और क्लास ठीक है।